ओम शांति। सभी एक बार फिर से एक हाथ की ताली से दीदी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मधुबन तपोभूमि, जहां बारिश के रिमझिम में सूर्य आया है और आज का वरदान कि ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहकर हम अंतर्मुखी भी बनते हैं और स्वमानधारी भी बनते हैं। इतना सुंदर संगम में भी ये पहली बार है। 1980 में समर्पित ये पुष्प न केवल भारत अपितु सारे विश्व में परमात्मा शिव का प्रकाश अपनी उषा में समा रहा है। आदरणीय उषा दीदी जी, चाहे रामायण का कोर्स हो, चाहे गीता का ज्ञान हो, चाहे शिविर हो जिसमें हम सब कन्याएं भी आते हैं और अपना जीवन बनाते हैं, वो ट्रेनिंग हो, हमने सदा दीदी का वक्तव्य सुना है और अपने जीवन में शिव बाबा का प्रकाश पाया है। कहते हैं बीज जब साधना करता है तो अंकुर बनता है, और अंकुर जब आराधना करता है तो पुष्प बनता है, और पुष्प जब नमन करता है तब फल बनता है, और फल यदि मीठा हो तो ऐसे अलौकिक फल और फूल सबको प्रिय लगते हैं। तो आदरणीय उषा दीदी जी का हार्दिक अभिनंदन, और भट्टी में तपेंगे बारिश की बूंदों के साथ। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा के आज के मधुर महावाक्य हम सभी ने सुने कि जिसमें बाबा ने बहुत प्यार से कहा, हे मेरे मीठे लाडले सिकिलदे बच्चे। कितना प्यार भगवान हम सब बच्चों को करते हैं, और बुद्धिवानों की बुद्धि ऐसी श्रीमत और बुद्धि देता है जो बाबा कहे तुम्हें आधा कल्प के लिए कोई वजीर रखने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो कितना प्यार से बाबा ने हम बच्चों को संवारा है और अपना बनाया है। जितना प्यार बाबा हम बच्चों को करते हैं उतना प्यार हम बाबा को करते हैं। जी, प्यार का सबूत क्या है? हम बाबा को प्यार करते हैं उसका सबूत क्या है? श्रीमत पर चलना और भाव समान बनना। प्यार का सबूत है टर्न करना अर्थात परिवर्तन करना। भगवान की जो चाहना है वैसा बन के दिखाना, ये है प्यार का सबूत। तो इसीलिए बाबा के प्यार में प्रतिदिन हम थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते ही जाते हैं, और ये परिवर्तन की प्रक्रिया से ही धीरे धीरे संपूर्णता की ओर हम जाएंगे, पहुंचेंगे। लेकिन अब समय की समीपता को देखते हुए बाबा चाहते हैं कि बच्चे थोड़ा परिवर्तन की गति क्या करें, तीव्र करें। और इसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो। तो तीव्र पुरुषार्थ जब करते हैं तो संस्कारों का परिवर्तन सहज हो जाना चाहिए। अब तक भी हम कई बार पुराने संस्कारों के साथ अपने आप में लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अब मुझे योद्धा नहीं चाहिए, योगी चाहिए। ऐसे सरल योगी जो सहजता से अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करके बाप समान बन करके दिखाए। बाबा की यही एक चाहना हर बच्चे के प्रति है कि मेरा हर बच्चा समान बन जाए, बाप समान। तो उसके लिए कैसे अपने संस्कारों को परिवर्तन करेंगे, उसकी कुछ विधि अपनाने की आवश्यकता है। तो उसके लिए पहले तो हम ये समझे कि कोई भी संस्कार बनता कैसे है, कैसे बनता है? बार बार करने से। लेकिन बार बार भी कब करते हैं हम? नए संस्कार को क्यों नहीं बार बार करते हैं? ताकत नहीं है नए संस्कार धारण करने की। और क्योंकि अगर संस्कार मालूम पड़ जाए कैसा बनता है तो उसको मिटाने का तरीका भी आसान हो जाएगा, है ना? तो बनता कैसे है? कोई भी संस्कार बनता कैसे है? सबसे पहले संकल्प उत्पन्न होता है और उस संकल्प के साथ भावनाओं को जोड़ते हैं। भावना जब जुड़ती है तो स्वीकार करते हैं, चलता है, कोई बात नहीं। तो वो संकल्प उत्पन्न हुआ, कमजोर संकल्प, उसके साथ भावनाओं की शक्ति जुड़ी और उसको स्वीकार किया कि ये तो होता है, चलता है, है ना? स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद उसको विजुअलाइज किया, उसको देखा अंतरचक्षु से अपने स्वरूप में। देखने के बाद उसको फील किया, एक्सपीरियंस किया, और वो एक्सपीरियंस फिर बार बार चिंतन में लाते हैं, फिर उसको वर्णन करते हैं, दूसरों से अप्रूवल लेने के लिए वर्णन करते हैं। ऐसा तो होता ही है ना, अगर सामने वाले ने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता ही है। तो बार बार वर्णन किया और अप्रूवल मिला किसी से तो कर्म में आए, और जब कर्म में आ गए तो संस्कार बना। और फिर वो कर्म बार बार होता है तब वो बहुत पक्का संस्कार बन जाता है। तो इसलिए ये प्रक्रिया है, स्टेप्स है संस्कार बनने का। तो संस्कार मिटाएंगे कैसे? उसके बजाय नया संस्कार बनाने की जरूरत है। तो उसके ऑपोजिट का जो संस्कार है, मान लो कि क्रोध है, क्रोध का संस्कार बन गया मेरा, अब उसको मिटाना है तो मिटाने के लिए उसके अगेंस्ट में शांति, सहनशीलता और शक्ति स्वरूप होना, प्रेम स्वरूप, उस संकल्प को, उस संकल्प रूपी बीज को इमर्श करते जाना, उसको स्वीकार करना, अमृत वेले बाबा से उसको सकाश दिलाना। क्योंकि साइकोलॉजिकली ये कहा गया है कि हमारी बुद्धि, क्योंकि हम सभी सतयुगी आत्माएं हैं ना, सतयुग में कोई नेगेटिव शब्द नहीं होता है, तो हम सबकी बुद्धि सतयुगी बुद्धि होने कारण भले डिग्रेड होते होते कलयुग में आए, लेकिन कलयुग में भी अभी तक हमारी बुद्धि नहीं शब्द को स्वीकार नहीं करती है, नहीं शब्द को वो पहचानती नहीं है। इसलिए कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, मानो क्रोध है, क्रोध का संस्कार, तो अमृत वेले उठते हैं, बाबा से सकाश लेनी है, तो क्या सकाश लेते हैं, बाबा मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, हाँ बाबा मुझे शक्ति दो, सकाश दो, आज सारा दिन मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। अब नहीं शब्द को हमारी बुद्धि रिकॉग्नाइज नहीं करती है, तो आज सारा दिन हमको गुस्सा नहीं को काट दिया बुद्धि ने, क्या हुआ, आना चाहिए, समझा। इसलिए आप देखेंगे कि जिस दिन आप सोचते हैं कि आज गुस्सा नहीं करना है, उस दिन ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि सकाश जो बाबा से लिया वो सकाश किसको गई, उस गुस्से के संस्कार को गई। इसलिए बाबा हमें तरीका बताते हैं कि बच्चे जो पॉजिटिव संस्कार है उसको आप इमर्श करो, अमृत वेले बाबा से जो अप्रूवल लेना है हमें उस संस्कार के लिए, कि प्रेम का संस्कार, शांति का संस्कार, शक्ति का संस्कार, सहनशीलता के संस्कार, उसमें से जो आप समझते हो उस समय की आवश्यकता है, उस समय उस संस्कार को इमर्ज करो, उसको विजुअलाइज करो, और विजुअलाइज करते हुए उसको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये मेरे दैवी संस्कार है। उसको एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट करने के बाद बाबा के सामने अप्रूवल लो, दुनिया के लोगों के सामने नहीं, क्योंकि दुनिया के लोगों के सामने अगर अप्रूवल लेने जाएंगे वो कहेंगे चलता है उसमें क्या है। इसीलिए बाबा के सामने अप्रूवल लो और बाबा से सकाश लो, प्रेम के स्वरूप को सकाश दे बाबा, और वो प्रेम पूर्ण व्यवहार आज मुझे सारा दिन करना है, ये है पॉजिटिव एफर्मेशन। पॉजिटिव एफर्मेशन उसको नहीं कहा जाता कि आज मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, यह पॉजिटिव नहीं है। नहीं शब्द जहां आया, जिस सेंटेंस में भी आया, वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए यह स्वरूप अपना इमर्ज करो, विजुअलाइज करो, उसको देखो कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं और शांति की सकाश बाबा मुझे दे रहे हैं, तो आप खुद अनुभव करेंगे कि सारा दिन आपको गुस्सा नहीं आएगा। ये पहला तरीका है कि उस नेगेटिव संस्कार के ऊपर विजय प्राप्त करने का। हर एक अपनी कमजोरी को बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रैक्टिकल प्लान अगर मैं बताऊं कि हर एक अपनी कमजोरी को जानते हैं, अच्छा जितनी कमजोरी आपके अंदर है उसकी लिस्ट बनाओ, क्या क्या कमजोरी है। प्रैक्टिकल एक्शन प्लान बता रही हूं कि जितनी कमजोरी है उसकी लिस्ट बनाओ, बहुत बहुत तो कितनी होगी, कितनी होगी कमी कमजोरी, कितनी होंगी हर एक ब्राह्मण में, 10 से ज्यादा तो नहीं होंगी ना, मैक्सिमम अगर देखा जाए 10 होगी, उससे ज्यादा नहीं होंगी, वो भी बड़े बड़े तो खत्म हो गए, वही छोटी छोटी कमी कमजोरी रह गई है, तो 10 जितनी होगी। अब वो 10 की लिस्ट जो बनाई, हर एक कमजोरी के अगेंस्ट 2 सदगुण सोचो, जैसे कहा कि भाई क्रोध गुस्सा आता है तो गुस्सा के अगेंस्ट दो सद्गुण को सोचो, शांति और प्रेम। मानो ये दो, या मान लो कि अगर आपके अंदर गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि सहन शक्ति नहीं है तो सहनशीलता, या गुस्सा इसलिए आता है कि धैर्यता की कमी। कई लोग होते हैं ना, वो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी, और कोई जल्दी नहीं कर सकता है तो गुस्सा आता है, तो धैर्यता की कमी है। तो शांति और धैर्यता और या मान लो कि सहनशीलता, ये तीन सद्गुण की कमी है, इसलिए मुझे मेरे अंदर ये कमी कमजोरी है। तो बहुत बहुत तो अगर सारी 10 कमजोरी के अगेंस्ट में 20 सद्गुण की कमी जो महसूस किया उसमें कुछ रिपीट भी होती होगी, है ना, तो भी 20 मान लो कि 20 सद्गुण की कमी है। अब ये 20 सद्गुण की कमी है उसको क्या करो कि प्रतिदिन अमृत वेले कोई न कोई शुरू करो, पहला नंबर से जो कमी कमजोरी लिखी उसके अगेंस्ट में 2 सद्गुण की कमी जो लिखी आपने, तो वो सद्गुण के रूप में, तो पहला सद्गुण जो है उसको 1 सप्ताह तक लगातार लगातार कंटिन्यूएशन में 1 सप्ताह तक बाबा से सकाश लेकर के अपने उस स्वरूप को देखो। मान लो कि सप्ताह हो गया, उसके बाद आप खुद में एक चेंज महसूस करेंगे, बाबा की सकाश से परिवर्तन न हो ये तो हो नहीं सकता है, तो होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ और मुझे आवश्यकता है, और 1 सप्ताह कर लो, 15 दिन लगातार आप उस सद्गुण का स्वरूप बन करके बाबा से उस स्वरूप को सकाश प्राप्त करते जाओ, आप देखेंगे 15 दिन में तो वो संस्कार समाप्त हो ही जाना चाहिए। उसके बाद जो उसके कनेक्टेड दूसरा सद्गुण है तो 1 सप्ताह उसके ऊपर मेहनत करो, उसकी सकाश बाबा को से लेते जाओ उस स्वरूप को। तो पहले वाली जो कमजोरी है उसको मिटाने में आप खुद महसूस करेंगे 3 सप्ताह, या 10 दिन एक को 10 दिन दूसरे को, तो 20 दिन के अंदर तो आपका वो संस्कार समाप्त होना ही है, 3 सप्ताह के अंदर वो संस्कार समाप्त हो ही जाना है। इतनी बाबा की पावरफुल सकाश, जो कहा आज वरदान में ज्ञान सूर्य की वो किरणें हमने दिलाई है और ये कीटाणु समाप्त हुए हैं। अब 20 सद्गुण को धारण करने के लिए 20 सप्ताह तो चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। अच्छा, किसी किसी को या हर एक को 2-2 सप्ताह भी लिया जाए तो 20 सद्गुण को 40 सप्ताह, तो साल में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह, तो भी साल के अंदर संपूर्ण बन सकते हैं कि नहीं बन सकते है? बताओ, बन सकते हैं। यह है प्रैक्टिकल एक्शन प्लान कि जो बाबा कहते कितना समय चाहिए। बाबा कई बार अव्यक्त मुरलियों में ये बात पूछते हैं कि बच्चे अभी कितना समय चाहिए परिवर्तन के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, अभी एक दिन ये संस्कार को मिटाने के लिए ये सद्गुण को लेकर बैठते हैं, कई बार हम ये सद्गुण, तो रोज हमारा परिवर्तन है, एक फोकस नहीं है हमारा कि हमें पुरुषार्थ कैसे करना चाहिए। एक कमी कमजोरी मिटी नहीं कि उसके पहले हम दूसरे पर फिर तीसरे पर और उसमें कमी कमजोरी को सकाश दिला रहे हैं गलती से, तो वो संस्कार और मजबूत हो रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे एक प्लानिंग से पुरुषार्थ करें। तो 10 कमी कमजोरी को मिटाने के लिए अगर 40 सप्ताह भी चाहिए तो भी साल के अंदर पूरा हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा। तो बस संपूर्णता कितनी दूर है? हाँ, एक वर्ष भी नहीं है। हाँ, 7-8 महीने में हो जाएंगे सब। हाँ, धनबाद वाले हो जाएंगे सब। मैं हाँ, संपूर्ण हो जाएंगे ना? जो बाबा चाहते हैं वो संपूर्ण हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये है प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। मुझे अपने लिए इस भट्टी से यहां से लेके जाना है और ले जा करके हमें अपने आप को उस अनुसार चलाना ही है। अब दृढ़ संकल्प जिसको कहा जाए, दृढ़ संकल्प उसी के आधार पर करना है। हो जाएगा? बहुत अच्छी बात, थैंक यू। दूसरा जो बाबा कहते हैं, संस्कार परिवर्तन के लिए डीप रियलाइजेशन की आवश्यकता है। जैसे वाल्मीकि ने परिवर्तन कैसे किया, इतना बड़ा डकैत था, लूटता था सबको। एक सन्यासी ने जब उसको पूछा किस लिए करते हो, कहा अपने परिवार को पालने के लिए। तो कहा जरा परिवार से पूछ लो कि ये कर्मों का फल जब भोगने का समय आएगा तो वो उस समय तेरे साथ होंगे भोगने में? कहा क्यों नहीं होंगे? कहा पूछ के तो आओ। पूछने गया तो हरेक ने कहा भाई तेरा कर्म है, हमने थोड़ी किया है, ये तो तेरा कर्म है, तुझे भोगना पड़ेगा वो तो। माता पिता से पहले पूछा तो माता पिता ने कहा हम तो पहले चले जाएंगे, तो तेरा कर्मों का फल कब भोगना होगा हमें क्या मालूम, हमें मालूम हो तो हम वहां पहुंच भी जाएं, लेकिन हमें पता ही नहीं, हम तो पहले चले जाएंगे, और हम कहां जाएंगे हमें क्या मालूम, न तुम्हें मालूम है, जो तुम वहां आ जाओ कि अभी मेरे फल के साथ आप भी भोगना भोगो। तो जवाब मिला। फिर उसके बच्चों के पास गया, बच्चों ने कहा कि पिताजी आप तो पहले चले जाएंगे, हमें क्या मालूम आप कहां गए, जो हम वहां पहुंच जाए आपके कर्मों का फल भोगने के लिए साथ साथ। जवाब मिल गया। अर्धांगनी के पास गया, बोले तू तो मेरी अर्धांगनी है, तुम तो मेरा फल भोगने के समय साथ होगी। कहा स्वामी आप कहां होंगे, मैं कहां होंगी, पहले मैं जाऊं पहले आप जाओ पता ही चलता है, अब आप कहां जाएंगे मुझे क्या मालूम, जो मैं फल भोगने के लिए वहां पहुंच जाऊं। तो कर्म सिद्धांत के अनुसार जो कर्म करता है उसको ही फल भोगना पड़ता है ना? तो ये डीप रियलाइजेशन के ये पुराने संस्कार से जो मेरा कर्म बंधन बन रहा है उसकी भोगना मुझे खुद भोगनी होगी। उस भोगना को अगर इमर्ज करो, उस भोगना को इमर्ज करो कि क्या वो भोगना भोगने के समय वो भोगना मुझे मंजूर होगी, मेरा मन उस बात को स्वीकार करेगा, भोगना तो भोगनी पड़ेगी, ये तो होगा नहीं कि भोगना नहीं भोगनी पड़ी। वो एक पता नहीं कि कहां पर मैंने सुना, तो हाँ वो जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते थे ना, तो उसका एक आध एपिसोड मेरे को किसी ने भेज दिया था व्हाट्सएप पर कि देखो कर्मों की गुह्य गति कितनी स्पष्ट समझाई गई है इसमें। तो उसमें कहा कि एक व्यक्ति का एक पैर पैदा हुआ, तब तो दोनों पैर थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि उसका एक पैर एम्प्यूट करना पड़ा, काटना पड़ा, और फिर वो क्लचेस के साथ चलता रहा। तो उसको जब पास्ट लाइफ में लेके गए तो कहा कि क्यों ये पैर मेरा काटना पड़ा, तो उसमें उसको महसूस हुआ कि मैंने पिछले जन्म में जो भी आता था ना उसको लाती मारता था, इतना दुख और दर्द मिला है, किसी किसी को ऐसी लात मारता था, जानवरों को भी लात मारता था, मनुष्य को भी लात मारने की एक आदत पड़ गई थी, तो ये राइट लेग से इतना उसने लात मारा था तो आज भोगना के समय वही राइट लेग काटना पड़ा। वो उसमें बहुत स्पष्ट वो एक एपिसोड में ये देखने को मिला कि भाई कर्मों का सिद्धांत जो है वो छोड़ता तो नहीं है किसी को, तो जो कर्म मैंने किया है उसकी भोगना मुझे भोगनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। तो ये डीप रियलाइजेशन कि ये कमजोरी को लेकर के मैं जो कर्म कर रहा हूं उसकी भोगना भोगने का समय जब आएगा तो वो भोगना कैसी होगी। वाल्मीकि को इसी चीज ने परिवर्तन कर दिया कि एक डकैत से एक ऋषि बना दिया, तपस्वी बन गया। बाबा भी हम बच्चों को कहते तुम योगी हो, ये रियलाइजेशन कि मैं योगी हूं, हर कर्म करते समय अटेंशन। बाबा की आने वाले संडे की मैं मुरली पढ़ रही थी, उसमें बाबा ने कहा कि बच्चे अटेंशन की कमी के कारण ही टेंशन होता है, अटेंशन की कमी। तो जहां हमें अपने कर्मों के ऊपर अटेंशन नहीं है उसको इतना स्वाभाविक समझ लिया है और स्वाभाविक समझने के आधार से हम करते जा रहे हैं, लेकिन सोचो जब ये इकट्ठा होता जाता है तो उसकी भोगना हमें किस तरह से भोगनी पड़ेगी, हमारे सामने वो किस तरह से आएगा, मेरा अपना ही कर्म, उसको विजुअलाइज करने का प्रयत्न करें। इसको कहते हैं डीप रियलाइजेशन। जब ये डीप रियलाइजेशन होगा तो शायद उस संस्कार से मुक्त होना हमारे लिए स्वाभाविक हो जाएगा, सहज हो जाएगा, क्योंकि कौन भोगना भोगना चाहेगा। नहीं, चलो बाबा कहते ये लास्ट बर्थ होने कारण जब आप आगे सतयुग में जाने वाली आत्मा है, लेकिन धर्मराजपुरी में तो उसकी सजा भोगनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक पवित्र नहीं हुए हैं, सारे कर्मों को हमने समाप्त नहीं किए हैं पुराने, तब तक तो नई दुनिया में जाना संभव ही नहीं होगा, परमधाम जाना भी संभव ही नहीं होगा। तो धर्मराजपुरी में सूक्ष्म शरीर के द्वारा भी उसकी भोगना तो भोगनी पड़ेगी। आज जैसे बाबा ने कहा, दिखा दिया कि सीता को आग से लेके गए, आज भी बाबा ने ये बात बहुत सुंदर तरीके से कर्मों की गुह्य गति में जैसे स्पष्ट किया कि वास्तव में योग अग्नि से जलाओ, अगर योग अग्नि से नहीं जलाएंगे तो प्रैक्टिकल अग्नि से जाना पड़ेगा, उससे गुजरना पड़ेगा, जिसको उन्होंने दिखा दिया कि सीता को आग से पार होना पड़ा। अर्थात सूक्ष्म शरीर द्वारा वो आग जो होगी वो आग इतनी पावरफुल होगी कि जैसे सूक्ष्म शरीर भी हमारे वो जलने का अनुभव करेगा। तो कहने का भावार्थ के बाबा ने हर चीज का हमें नॉलेज दिया है कि स्थूल में भले बता दिया लेकिन वास्तव में वो सूक्ष्म भोगना की बात है। या तो योग अग्नि से चुकतू करो, जो चीज योग अग्नि से चुकतू नहीं हुई तो उसको प्रैक्टिकल अग्नि से चुकतू करना पड़ेगा, है ना। अब प्रैक्टिकल तो आगे जन्म नहीं है, इसलिए सूक्ष्म में उस आग की फीलिंग से गुजरना तो पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, गुजरना ही पड़ेगा। ये डीप रियलाइजेशन हो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे योग अग्नि को प्रज्वलित ऐसी पावरफुल करो जो सूक्ष्म विकर्म या जो भी पाप कर्म है वो सब दग्ध हो जाए, समाप्त हो जाए, ताकि हम धर्मराजपुरी से भी जब जाए तो सलाम भरते हुए जाए बाबा को, है ना, सलाम भरते हुए जाए। हम उस कष्ट से नहीं, ये शरीर के साथ फिर भी चुकाना सहज है, सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा को चुकाना बहुत कठिन है। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे अभ्यास करो कि बाबा की याद निरंतर बनी रहे। जितनी हमारे अंदर बाबा की याद होगी, अंतिम समय में भी बाबा की याद होगी, तो सहजता से हम क्रॉस हो जाएंगे। बाबा ने जैसे संडे की मुरली में भी बहुत सुंदर बात कही कि बच्चे तुम्हें प्रकृति के हर तत्व को भी मनसा सेवा द्वारा सकाश देते हुए उसको सतो प्रधान बनाना है। बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है जिसमें बाबा ने कहा था क्यों करना है उसको, प्रकृति के पांचों तत्व को भी सतो प्रधान क्यों बनाना है। तो जैसे बाबा ने कहा कि आज इंद्रदेव है प्रकृति का, जो बरसात है या पानी है, तो पानी तत्व को भी हमें सकाश देनी है। क्यों देनी है? ताकि लास्ट में जब पानी अपनी मर्यादा को क्रॉस करेगा, बाढ़ आई, सुनामी आई, तो उस समय पानी में व्यक्ति कैसे तड़प तड़प करके शरीर छोड़ेगा। लेकिन अगर हमने पानी तत्व को सकाश दी है तो वो ऋणी हो जाता है हमारा, ये भी कर्मों की गुह्य गति है, वो ऋणी हो जाता है। बाढ़ आएगी, वो आपके पैरों को छू करके उतर जाएगी, वो आपको तड़प तड़प के मरने नहीं देगा। जिसका उदाहरण कई बार देते हैं कि बच्चे आग तत्व को आपने सतो प्रधान किया है, तो चारों तरफ आग लगने के बाद भी बिल्ली के पुंगरे सुरक्षित रहेंगे, है ना, सुरक्षित रहेंगे। वो आग आपको जला नहीं सकती है, ऐसी तड़पा नहीं सकती है। इसीलिए बाबा ने कहा कि हर एक तत्व को आपको सकाश दे करके सतो प्रधान बनाना है, ताकि वो तत्व भी आपको तड़पा करके नहीं मार सकते। धरती कंप हुआ, धरती को सकाश नहीं दी, भूकंप आया। बाबा ने आज की मुरली में धरती कंप भी बहुत बड़ा पाठ बजाती है विनाश लीला में, तो इसीलिए जब वो पाठ बजाएंगी जो दब करके मरते हैं, सोचो कितनी उसको तकलीफ होगी शरीर छोड़ने में, कहीं से श्वास नहीं, और उसमें बाबा की याद रहेगी। फिर जब आग में जल रहे होंगे तो क्या बाबा की याद रहेगी? तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे प्रकृति के पांचों तत्व को भी तुम एक तरफ बाबा से सकाश लेते हुए देते जाओ। क्यों? ताकि वो तत्व ऋणी हो जाए और वो तुम्हें तड़पा करके मार नहीं सकता है, क्योंकि वो सोचता है ये प्रकृति पति है मेरा, तो अपने प्रकृति पति को वो कैसे कष्ट दे सकता है, वो ऋणी हो गया ना उसका। इसलिए बाबा कहते योग में आप प्रकृति के पांचों तत्व को सकाश देते हुए उनको सतो प्रधान बनाओ, तो वो आपको कभी भी कष्ट नहीं देगा। विनाश के समय आप बाबा की याद में सहजता से शरीर छोड़ेगी, उसके बाद जो होना होगा वो होगा, है ना। तब बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने संस्कार को भी परिवर्तन करके इतने विशुद्ध बन जाए, ये डीप रियलाइजेशन से कर्म की गुह्य गति को समझते हुए, जो आप सहजता से उससे फ्री हो जाओ। तीसरा तरीका जो बाबा कहते संस्कार परिवर्तन का है वो है संग का रंग। बाबा ने पिछली मुरली में कहा, अव्यक्त मुरली में, होली की मुरली जब चली, कि परमात्मा संग के रंग में रहो। तो वो संग का रंग ऐसा होगा जो अपने आप हमें संपूर्णता की ओर ही ले जाएगा। परमात्मा संग का रंग ऐसा है। बाबा कहते जिसके समान बनना है, समीप जाना है, तो उसके संस्कार की समानता तो हो। दुनिया में भी जब कोर्स कराते तो हम लोगों को क्या सुनाते हैं? हम लोगों को यही सुनाते हैं जो जिसके समीप होगा, माना संस्कार मैच हो रहे होंगे तभी तो उसके साथ उसकी बनी। इतने लोगों के एक क्लास में 50 स्टूडेंट होते हैं स्कूल के अंदर, और 50 स्टूडेंट के साथ सबके साथ दोस्ती नहीं होती है, किसी किसी के साथ हो जाती है, एक ग्रुप हो जाता है 3-4 लोगों का, जिनके संस्कारों की समानता है उसके साथ दोस्ती होती है। अब भगवान से हमने दोस्ती तो कर लिया, लेकिन ये दोस्ती निभेगी तब, निखरेगी तब, जब कहां न कहां संस्कारों की समानता होगी। बिना संस्कारों की समानता के तो निखरेगी नहीं। तो वो संग का रंग हमारे ऊपर ऐसा चढ़े कि अगर मान लो कि कोई पुराने संस्कार इमर्ज भी हो तो वो संग हमें उस संस्कार के वश होने नहीं देगा। वो संग ऐसा है जो उस संस्कार से हमें अपने आप दूर ले जाएगा। तो परमात्मा संग का रंग ऐसा है जो हमें अपने आप ऐसी दिशा में ले जाए जो पुराने संस्कारों को क्रियान्वित होने का अवसर ही न मिले उसके संग के रंग में। चौथी बात, संस्कार परिवर्तन करना है तो जैसे दुनिया में भी लोगों को अगर अपने शरीर में से भी कोई भी प्रकार की अशुद्धि हो, विकृति हो, उसको समाप्त करना है तो क्या कहते डॉक्टर लोग? नेचर क्योर में जाओ, नेचर क्योर में जाओ। तो ये जो अशुद्धि है, ये जो खून का विकार है, वो क्लींस हो जाएगा। नेचर क्योर करने से क्लीनिंग हो जाएगी, आंतरिक क्लीनिंग हो जाएगी, तो अपने आप वो बीमारी समाप्त हो जाएगी। ठीक इसी तरह हमारी जो ये कमी कमजोरी है उसको समाप्त करने के लिए भी हमें नेचर क्योर करना जरूरी है। और नेचर क्योर में क्या कराते हैं? उपवास है ना, व्रत रखो भाई, 21 दिन का उपवास करो, नेचर क्योर है। तो ठीक इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे ये संस्कार के ऊपर विजय प्राप्त करना हो तो उपवास तो करना पड़ेगा। उपवास माना जैसे वो भोजन से परहेज रखते हैं, ऐसे हमें उस संस्कार से या उससे कनेक्टेड चीजों से परहेज रखने की आवश्यकता है। ऐसे वायुमंडल से परहेज, ऐसे साधनों से परहेज, जैसे आजकल के समय में मोबाइल एडिक्शन भी एक एडिक्शन हो गया है, तो नेचर क्योर करने के लिए, अपनी इस कमजोरी को मिटाने के लिए कुछ समय उसका भी उपवास तो रखना पड़ता है, रखना पड़ता है कि नहीं? और अगर फिर भी नहीं मिटता है तो वो कीपैड वाला ले लो, है? क्या करें? बस खाली फोन ही करना है ना, तो वो अपने आप जो हमारे संस्कार बने हैं रील देखने का सारा दिन, ये है क्या कहते हैं इसको, हाँ गुटका, गुटका खाते समय क्या करते हैं, ऐसे से ऐसे करते हैं ना, हाँ गुटका कैसे खाते थे लोग पहले, ऐसे करते थे ना, तो ये मोबाइल पर ऐसे से करना ये क्या हो गया, गुटका ही हो गया ना, डिजिटल गुटका कहेंगे इसको। तो डिजिटल गुटका अगर उसका उपवास रखना है तो कीपैड ले लो, कीपैड से अपने आप वो संस्कार डिजिटल गुटके का आपका समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आजकल देखा गया कि ब्राह्मणों में भी क्या वो गुटका तो नहीं लेते, नशा मुक्ति का 10 करोड़ का प्रोजेक्ट तो चला दिया, लेकिन ये डिजिटल गुटका तो बहुत ले रहे हैं। तो उसी का उपवास करना बहुत जरूरी है, उसका उपवास करना बहुत जरूरी है। कीपैड वाला मोबाइल ले लो, फोन करने के लिए काम आएगा, 2-4 दिन आपको थोड़ा अनइजीनेस लगेगा, उसके बाद आदत पड़ जाती है। थोड़ा दिन उपवास करना पड़ता है, उपवास करेंगे तो अपने आप, फिर देखो पुरुषार्थ कैसा होता है। ये गुटका से पुरुषार्थ क्या हो गया है, हैं? अनुभव है ना, अनुभव है ना, तो मुक्त होना है कि नहीं होना है, संपूर्णता की ओर जाना है कि नहीं जाना है। दूसरी कमी कमजोरी तो लिस्ट निकाल दी, ये कमी कमजोरी डाला उस लिस्ट में, ये डालना जरूरी है। और इसलिए नेचर की ओर उसका उपवास करना बहुत आवश्यक है। जब ये नेचर की ओर करेंगे, जब इससे हम मुक्त हो जाएंगे, जो बाबा ने व्यर्थ से मुक्त होने के लिए कहा है, ये सचमुच बहुत व्यर्थ है। और इस व्यर्थ से मुक्त हो जाओ, प्रैक्टिकल हमने इसका प्रयोग किया, हमने अपने मोबाइल से YouTube निकाल दिया, Facebook निकाल दिया, Instagram निकाल दिया, सब निकाल दिया, खाली एक WhatsApp मैसेजेस के हिसाब से रखा है, बाकी ये सब निकाल दिया प्रैक्टिकल। और मैं अपना अनुभव बताती हूं कि बहुत मुझे लाइटनेस फील होने लगा, मेरा पुरुषार्थ में बहुत अच्छा, एक क्वालिटी पुरुषार्थ जिसको कहा जाए वो आरंभ हुआ है। इसीलिए जो है अपने आप को ये छोटी छोटी कमजोरियों में भी बंधने ना दो, ये संस्कार भी अंतिम समय शायद बहुत बड़ा विघ्न बन करके मेरे सामने आएगा। जब पढ़ते हैं सुनते हैं देखते हैं कि आज ये डिजिटल एडिक्शन भी कितना बड़ा एडिक्शन है लोगों के जीवन में, छोटे छोटे बच्चे इसके शिकार कैसे बन रहे हैं, उसके बिना जैसे खाना नहीं, 6 महीने का बच्चा बिना मोबाइल के खाना नहीं खाता है। हाँ, बात करने के लिए भी फोन देखना पड़ता है। भावार्थ ये कि बाबा के साथ भी शायद कहीं न कहीं हमारी लिंक जो टूटती है उसके लिए भी जिम्मेदार तो यही है। प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखो और उसका अनुभव करके देखो और बहुत अच्छी फीलिंग में आप आ जाएंगे। इसलिए ये नेचर क्योर करना बहुत जरूरी है। जितना आप ये नेचर क्योर करने लगेंगे उतना ही आप खुद अनुभव करेंगे जैसे कि एक फ्री हो गए, हम मुक्त हो गए, है ना। मुक्त होने का जो एहसास है ना, फ्रीडम, रियल फ्रीडम तब अनुभव करेंगे। तो इसीलिए उपवास रखना आवश्यक है। जब तक ये उपवास नहीं रखेंगे नहीं आगे बढ़ना होगा। संपन्नता की ओर हमारे कदम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, है ना। पहले कई बार कई लोग, भाई हम तो कमेंट्री सुनते हैं इसलिए योग के लिए चाहिए, या हमको गाने के लिए चाहिए। अरे साइलेंस में योग करके देखो, बहुत मजा आएगा। बाबा से रियल हार्ट टू हार्ट बातें होने लगेगी, आपको कमेंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिल से दिल की बातें बाबा से होने लगेगी। तो मधुबन बेहद यज्ञ में आप आए हो, विशेष भट्टी करने के लिए आए हैं, राखी के अवसर पर आए हैं, तो राखी की गिफ्ट बाबा को कुछ तो देके जाएंगे या नहीं? हाँ, देके जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। मुबारक हो आप सबको, बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति।
एक हाथ की ताली से दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दीदी जी, आपके लिए एक गीत बनाया हुआ है, आप दो मिनट बैठिए। हाँ जी,
ओम शांति। दीदी, हम सब आपको इतने दिनों से बस YouTube पे ही मुरली आपकी सुनते, आज सामने बैठ के आपके क्लास करके बहुत खुशी मिली। दो लाइन में आपको सुनाना चाहती हूँ। प्यारी दीदी यूं ही आप बैठी रहो, तो ये महफिल रूहानी यूं सजती रहे, आप वरदान हमें यूं लुटाते रहो, झोली रत्नों से हम सब की भरती रहे। प्यारी दीदी यूं ही तुझको देखा तो नजरे ये कहने लगी, प्यारी बाबा की सचमुच तुम तस्वीर हो, ज्ञान धन भी लुटाते हो बाप समान, और चमकाते उन्हों की तस्वीर हो, हमको नजरों से यूं ही निहाल करो, आत्मा अपने में शक्ति भरती रहे। प्यारी दीदी यूं ही आप बैठी रहो, तो ये महफिल रूहानी यूं सजती रहे। कैसे गायन करूं दीदी जी आपका, ना कलम है ना सुंदर शब्दों की कला, हो खुदा के भी आप पे नाज रहे, गीत महिमा की गाते हैं वो भी सदा, आप शिक्षा हमें यूं सुनाते रहो, सब में रूहानी शक्ति यूं ही भरती रहे। प्यारी दीदी यूं ही आप बैठी रहो, तो ये महफिल रूहानी यूं सजती रहे।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का।